نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لباس کا بیان. اس میں سے ہم نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے. پیج 83 ہے. لباس الخیلائی, خود پسندی اور تکبر کا لباس. یعنی بعض دفعہ لباس پہن کر انسان اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا لمٹس ہیں اور کس طریقے سے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 37 سے یہ ٹاپک شروع ہوگا. تکبر سے اپنا آزار نیچے لٹکانے والے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. آزار ٹراؤزر کو کہتے ہیں, یعنی مرد کے لیے عموماً آزار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے, لیکن کوئی اگر بڑائی کے انداز سے یا اپنے آپ کو ڈیسنٹ اور مہذب کہلانے کے شوق میں ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو یہ چیز تکبر کی علامت ہے. حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. آپ دیکھیے کہ حدیث میں ایسے واقعات کا آنا قرآن اور حدیث کی تطبیق کا ذریعہ, کیونکہ یہی واقعہ سورۃ قصص میں ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی تکبر سے اپنا آزار لٹکائے جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا, اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. اسے نسائی نے روایت کیا. پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اس شخص کا نام نہیں پتہ تھا. قرآن میں نام بھی موجود ہے قارون, لیکن آپ نے تذکرہ نہیں کیا. تو اس سے گفتگو کا ایک ادب جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات اس سوچ کے ساتھ بیان بھی کی جائے کہ دوسروں کو فائدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات ہے, نام نہیں لینا چاہیے, چاہے سب کو نام پتہ بھی ہو, کیونکہ اس سے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور انسان دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں. تیسری بات, آپ دیکھیے کہ زمین میں دھسانا کس چیز کی علامت ہے؟ رسوائی کی, چھوٹا کرنے کی. تو جو بڑا بنے گا اللہ اس کو چھوٹا کرے گا. تو سب سے بہترین پہناوا وہ ہے جس کو پہننے کے بعد پہننے والا خود کو عاجز محسوس کرے. سیلف کانشیس ہو جانا, کیوریس ہو جانا اور ہر وقت یہی سوچتے رہنا میں کیسی لگ رہی ہوں. پہلے تو لوگ دوسروں سے پوچھتے تھے اور بعض کو تو دوسروں کی آنکھوں میں خود کو دیکھتے ہوئے پایا گیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات جو بری تو لگے گی لیکن نہ کروں گی تو مجھے برا لگے گا, اور وہ کیا کہ ہم آج سیلفیز کے دور میں آ گئے. کسی کو بھی عام حالات میں بھی جب ہم فنکشنز میں دیکھتے ہیں اور اگر وہ بہت ہی اپنے بارے میں ایسا ہو تو آکورڈ لگتا تھا. پہلے دور میں چھوٹے چھوٹے میرر شیشے پرسز میں ہوتے تھے, اگر کسی نے کسی کھانے کے دوران پینے کے دوران خود کو اس نظر سے دیکھنا بھی ہے کہ سب کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے تو ذرا سا چھپا کے سائڈ پہ جا کے دیکھتا تھا. اب سرے محفل لوگ اپنے آپ کو سیلفیز میں سے دیکھتے تصویریں کھینچتے ہوئے. مجھے ایک جگہ موقع ملا اور ایسی گیدرنگ تھی کہ کھلی جگہ تھی لیکن لوگ راؤنڈ ٹیبل پہ تھے, یعنی بہت کلوز نہیں تھے, کھلی جگہ تھی اس لیے بیٹھے تھے. میں نے دور بیٹھ کر دیکھا کہ ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے. میرا خیال ہے 7-8 سسٹرز کو میں نے اس وقت, جس وقت مجھے اس چیز کا خیال آیا, تو اپنے آپ کو سیلفیز کی نظر سے دیکھتے دیکھا. تو میں نے اس وقت کیا سوچا کہ آج دلہن کتنا تیار ہوئی. اس کا یہ خیال تھا کہ سب مجھے دیکھیں گے. اب لوگ دلہن سے زیادہ خود کو دیکھتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, بعد میں تصویروں میں زیادہ اچھا دیکھتا ہے, کیمروں میں دیکھ لیں گے, ویڈیوز میں دیکھ لیں گے. کیوں؟ اس وقت خود کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھا کلچر نہیں ہے. اللہ نے اگر کوئی سہولت دی ہے تو اسے کوئی اچھا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ جو نہ خوب تھا وہ خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو اگر ایسی کوئی عادت ہے تو اس سے ایوائڈ کریں. جو لگنا تھا لگ گئے. اچھا, اسے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ مجھے کریٹیکلی سن رہے ہوں گے نا, کیا مسئلہ ہے, یہ بھی خراب وہ بھی خراب. आपके पास सेल्फी है, फोन है, हो सकता है आपकी दोस्त या उस शादी में आई हुई बाकी सिस्टर्स के पास ये सहूलत ना हो, तो इधर से फिर क्लैश होंगे। फिर दूसरी बात है, हो सकता है बड़ी हसीन लग रही हो, लेकिन कोई ऐसा भी हो जो हसीन नहीं लग रहा। किसी भी सोसाइटी में जब दो मुख्तलिफ किस्म के लोग बन जाते हैं ना, तो आपस में नफरतें और बुगज आते हैं। आज बहुत सारी नफरतों की वजह भी ये है कि कुछ लोगों के पास ये सहूलतें हैं, कुछ के पास नहीं। और फिर तीसरा नुकसान क्या है कि वहाँ से जाने के बाद कई घरों में झगड़ा होगा कि मुझे भी दिलाएं। सेलफोन है, चमकते दमकते केसेस में लगाकर अगर आप उसको अपनी दोस्तों के सामने लेकर बैठते हैं, तो किसी एक के दिल में तो आ सकता है ना कि मेरे पास क्यों नहीं है। आमतौर पे नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब अभी दीन के साथ वो ताल्लुक ना हो या अभी वो आखिरत की जन्नत की नेमतें ना दिखी हो, तो ख्याल आ सकता है इंसान होने के नाते, तो खुद को दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया नहीं बनाना चाहिए। फिर अगली बात, दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए महंगे कीमती और नादरो नायाब लिबास पहनने वालों को क़यामत के रोज अजाब अलीम होगा। इसकी हदीस 41, 43, 44 में आगे आ रही है, तो वहाँ आप हदीस पढ़ लेंगे। हम तो इस पे बात कर चुके हैं और सारी बात यह है कि लिबास व तकवा खैर, अल्लाह तकवा के साथ ये सब कुछ दे और इन नेमतों का इस्तेमाल अच्छा करें। बहुत सारे सिस्टर्स के साथ मैंने कई दफ़ा क्वेश्चन आंसर्स में ये इश्यूज रखे हैं। दुआ करती हूँ इस पूरे सेशंस में अगले किसी मरहले पे इस सवाल का भी आपको जवाब दे दूँ कि फिर हम करें क्या इन कपड़ों का, कपड़ों को लेने का देने का, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटेजी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा अच्छे कपड़ों में रह सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी वार्डरोब में कोई 20-25 जोड़े लटक रहे हो। ये तरीका भी मुझे पता है, कहीं मौका मिला तो आपको बताएंगे, क्योंकि ये अभी एक ऑब्सेशन बन चुका है और मसला बन चुका है बहुत बड़ा। हमारे पास स्कूल है नॉर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ और भी जगहों पे होता है वहाँ भी ऐसा है, लेकिन नॉर्वे में बहुत देखा है। इधर आप ऐलान करें कि अमीना बाजार करने वाले हैं, करते हैं वो लोग, ज़ाहिर है फंडिंग उसी से ज़्यादा जमा होती है, खाने पकाते हैं वो, लेकिन जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमारे पास वहाँ शुरू हो जाता है वो कपड़े, पूरे पूरे सूट केसेस भर के सिस्टर्स कपड़े लाती हैं। कोई कहीं बुटीक्स में से आते हैं, नए कपड़े आते हैं ज्यादा, 95% नए कपड़े होते हैं, लिए हुए तो पहने नहीं है, टैग्स लगे हुए कपड़े, और फिर उसमें से 10-15% कपड़े ओनली ट्राइड, एक दफा पहनने में वो देख के भी पता लग जाता है ओनली ट्राइड। तो जब वो सिस्टर्स हमारी बेचारी, फिर वो कहना चाहिए कि कपड़ों के अंबार में खड़ी नजर ही नहीं आ रही होती, तो मैं उनको कहती हूँ ये सारे घरों में थे और लोगों ने शुक्र किया कि कोई ले चलो, उनको पता है ये बिकेंगे तो सदका जारिया में चले जाएंगे। कौन है जो आपकी चीज़ों की ऐसी वैल्यू डाले, यानी वो मशहूर होते हैं कि आप हमसे ले लें। वजह पता क्या है, एक तो मीना बाजारों पे आते हैं और दूसरा समर के शुरू में आते हैं जब लोग पाकिस्तान जाने वाले हैं, क्या जाने से पहले अलमारियाँ खाली कर रहे हैं, वजह साफ पता, फिर भरनी है। मैं बाज़ दफ़ा डिप्रेशन में चली जाती हूँ वो कपड़े देखकर, और यकीन करें ऐसे ऐसे कपड़े के जो उनके दिल से उतरे हुए हैं और हम जैसों ने कभी सोचा भी नहीं कि बना सकते हैं। मंगवाया था पाकिस्तान से, बच्ची को पसंद नहीं आया, आया था ये हुआ तो ये नहीं, इतनी सी रीज़न के ऊपर दूसरा जोड़ा आ गया। यानी फिर कहानियाँ लोग सुनाते हैं अपनी। बाहर रहने वालों के मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान से कपड़े मंगाना भी है, और एक सिस्टर का दुख वाकई शेयर करने के काबिल है कि इतने जिहाद और कोशिशों के बाद जब जोड़ा पहुंच गया बनाने से पहुंचने तक पसंद कोई नहीं आया, और सिर्फ 3 दिन रह गए थे अगली शादी में, तो फिर नया जोड़ा किस इमरजेंसी हालात में आया होगा, वो तबूक का सफर से कम नहीं था। यकीन कीजिए, तो दूसरों के मुकाबले में नहीं पहनना। आगे चलते हैं, अपने लंबे बालों और कीमती चादरों पर इतराने वाले को अल्लाह ताला ने जमीन में धंसा दिया। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बैनमा रजुलुन यमशी क़द आजबतहु जुम्मतुहु व बुरदहु इस खुसिफा बिहिल अर्दू फहुवा यतजलजलु फिल अर्दी हत्ता तकूमस्सा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी चलते चलते अपने बालों पर इतराया तो वो ज़मीन में धंस गया, अब वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता चले जाएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो आप देखिए कि इतराना पसंदीदा नहीं है। चले मर्द की तो बात छोड़ें, ये भी एक इशू है, खुले बाल। इसका भी कोई लिबास है? बिल्कुल है। आप देखिए कि बाल अलग पड़े हों तो बवाल है, खाने में निकल आए तो मुहाल है खाना, लेकिन वही काले बाल जब एक चेहरे पे लगते हैं तो खूबसूरती का इजाफा बनते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने बाल जैसी जो नेमत दी है, मैं तो शायद रोज ही कंघी करते हुए सोचती हूँ हैं क्या, सर के साथ है कितने सर पे हैं तो और उगाने की फिक्र में बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर गए, बाल मजबूत करो, कोई अंडा लगाता है, कोई तेल लगाता है, करते हैं ना, खूबसूरती है। हेयर स्टाइल एक बिग इशू है, पर वही बाल जब उतर कर कंघी में और कंघी के बाद बिंद में और वहां से इधर से उधर जाए तो कितना नागवार लगता है, इससे क्या पता चलता है? पहली बात तो मुझे इससे ये समझ आती है कि हमारी वैल्यू किसी एक खास चीज के साथ जुड़े हुए होने से होती है, हमारे बगैर काम ही कोई नहीं होता, यानी इसमें एक इज्तमाईयत का दर्स भी है। लेकिन जब हम उससे झड़कर अलग हुए तो फिर हम रुलते फिरते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि लंबे बाल अल्लाह सुबहान तला ने जो रखे हैं वाकई खूबसूरती का जरिया है, और ख़ास तौर पर औरत के लिए। अब एक औरत अपने बाल बाहर फैलाती है, दिखाती है, चमकाती है, हुसन में इजाफा हो जाता है, तो उससे फ़ायदा क्या? फिर वही बात कि जिस्मानी खूबसूरती दिखाने से बाहर क्या मिला। लेकिन जो इसका एक और बड़ा नुकसान है जिसको सुन के हो सकता है कुछ बच्चियां डरी जाए, जिन्नों को लंबे बाल बड़े पसंद होते हैं, वो आशिक हो जाते हैं। और हो सकता है आज के मॉडर्न दौर में कटे हुए बाल पसंदीदगी की अलामत है, लेकिन ऐसी मखलूकात जो बाहर खुली जगहों पे होती हैं वो काले लंबे चमकदार बालों को पसंद करती हैं। आप बाल खोलकर रात को शादी में गए, हो सकता है कोई जिन आशिक हो जाए, हो सकता है, रियली इट्स नॉट अ जोक, होता है। और फिर क्या होगा? ऐसी नजर लगेगी कि अल्लाह की बना। तो हमेशा खूबसूरती को बच्चे छुपा कर रखिए, एक्सपोज ना करें। आपको एक और अपनी नानियों दादियों की बात याद आएगी, कंघी से उतरे हुए जो बाल होते थे उसको बिन में नहीं फेंकने देते थे, कितने लोग इसको जानते हैं? जी सभी को पता है। हमारी नानी की गुथली होती थी, उसमें रोज डालती जाती होंगी डालती होंगी, फिर या तो मेरे हल उसको कहीं पानी में गिरवाती थी, कुछ लोग जलवाते थे, क्योंकि जादू टूना करने वाले इन बालों से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में जो एक जादू हुआ था ना, वो भी आपके बालों ही पे हुआ था। आपकी कंघी से चंद बाल हासिल किए गए एक यहूदी गुलाम के नाते से, और फिर उस पर गिरे लगाई गई। जी ऐसी चीज़ें सुनी हुई है कि बालों पर जादू करना, और लोग जब अपने बाल किसी को देते भी नहीं थे। और अगर आप कभी भी ऐसी कहानियां पढ़ें ना जो लोग जादू करते कराते टूनते हैं कब्रों पे, तो वो अक्सर कहेंगे फलां के बाल लेकर आओ। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये चीज़ें हमारे लिए फितना ना बने। अब आप उन एडवर्टीजमेंट को क्या कहेंगे जिसमें खुले बाल हैं, उसके बगैर कुछ बिकता ही नहीं है, शैम्पू है और कुछ है। अगर आप देखें ना तो सर, उर्दू में हम कहते हैं ना सर, असल में ये सिर छुपी हुई चीज़ है। अच्छा, अपने बाल खुद को सिर्फ सामने से दिखते हैं, पीछे से नहीं दिखते, ये भी इसमें एक किनाया है कि खुद भी ना देखो ज़्यादा, नज़र भर के देखने से भी नज़र लग जाती है। फिर आगे, अपनी ज़ात पर इतराने वाले को अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बैनमा रजुलुन यंज़ुरु फ़ी इत्फ़ैही क़द अजबतहु नफ़्सुहु इस तजलजलत बिहिल अर्दु इला यौमिल क़ियामा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने दोनों पहलुओं को तकब्बुर से देख रहा था, इसे अपना आप बड़ा अच्छा लगा, ज़मीन ने इसे क़यामत तक के लिए निगल लिया। इसे वज़ार ने रिवायत किया। ये ऊपर बयान किया गया था कि यहाँ ये हदीस है। आप नोट कर रहे हैं, इधर एक कॉमन थिंग दिख रही है आपको कि इस ऐसे तमाम तकब्बुर से निकलने वालों को ज़मीन में ही धंसाया गया। पकड़ की तो और भी सूरतें हो सकती थी, लेकिन इसमें वही बात है कि जो बड़ा बनेगा उसको अल्लाह ताला छोटा कर देगा। कीमती लिबास पर, अपनी खूबसूरती पर और लंबे बालों के हुस्न जमाल पर इतराने वाले को अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा रजुलुन यमशी फ़ी हुल्लती तुजिबुहु नफ्सुहु मुरज्जिलु जुम्मतहु इस खसफल्लाहु बिही फ़हुवा यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा। और आप देख रहे हैं सब जगह रिवायत फ़र्क है, कहीं बुखारी की है तो कहीं अबू दाऊद की है। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قیمتی لباس پہنے اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کیے جا رہا تھا، اسے اپنا بہت اچھا لگا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو بچنا چاہیے چیز سے۔ اگلا بھی کردار ایسا ہی ہے، ایک آدمی اپنی دو سبز چادروں پر اترایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا رجل فیما کان قبلکم خرج فی بردین اخضرین یختال فیہما امر اللہ الارض فخزته فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی اپنے گھر سے دو سبز چادروں میں نکلا اور ان پر اترانے لگا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ پہلے سبز کی بات ہے، اب آگے سرخ کی بات ہے۔ قیمتی سرخ جوڑے پر اترانے والے کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ اخصبہ رفاہ ان رجلا کان فی حلۃ حمراء فتبختر واختال فیہا فخسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک آدمی قیمتی سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھا، وہ اس پر اترایا اور تکبر کیا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اسے بزار نے روایت کیا۔ دو قیمتی چادروں پر اترانے والے متکبر کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته نفسه فخسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنی دو پسندیدہ چادریں پہنے اتراتا ہوا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب یہاں تک کہ ساری روایتیں جو تھیں وہ ایک ہی طرح کی تھیں، آپ دیکھیں کہ ان سب میں مختلف پاسبلٹیز بیان کی گئی ہیں، لیکن کامن تھنگ ایک ہے، خود کو بڑا سمجھنا۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹے، تو آپ لوگوں نے ایسے کئی کلپس دیکھے ہوں گے، آج کل تو کئی لوگ ایسی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ایسے زمین کھلتی ہے اور گاڑیاں پوری کی پوری اندر، درخت اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تین بڑے خسف ہوں گے۔ خسف کیا ہوتا ہے؟ زمین پھٹے اور اس میں چلے جائیں۔ زلزلے کیا ہوتے ہیں یا ویلکینوز اور لاوا کیا ہوتا ہے؟ کہ زمین کے اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں، لیکن خسف میں باہر کی چیزیں اندر جاتی ہیں، اور آج کل یہ بہت کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ ملک یا وہ بستیاں جو سمندروں کے کنارے ہوتی ہیں۔ فلوریڈا میں ہم تھے جب، ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے غالباً، تو وہاں میں ہمارے جو ہوسٹ تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں عام سننے میں آتا ہے، یعنی اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ لوگ اس پہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں کہ راتوں رات کہیں سے بھی زمین کھلتی ہے، کسی کی گاڑی زمین میں چلی جاتی ہے، کسی کا گیٹ چلا جاتا ہے۔ اور کسی نے اپنا واقعہ سنایا تھا، جو بھی ان کا سنا ہوا تھا، کہ دو فلور کا گھر، جیسے ڈبل سٹوریز ہوتے ہیں، تو اوپر والے بیڈ روم میں ایک بھائی سو رہا ہے جیسے گھر میں سوتے ہیں، اور جو مین گراؤنڈ فلور تھا اس میں ایک بھائی کا کمرہ تھا، تو صبح 9-10 بج گئے، وہ اٹھ نہیں رہا۔ خیر اخیر جب اس کا ڈور کھولا، دیکھا تو جس جگہ اس کا بیڈ تھا وہ پورے کا پورا بیڈ میں زمین میں جا چکا ہے، پورے گھر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بیچز ہیں آپ دیکھیے، فلوریڈا تو پورے بیچ میں ہے۔ ابھی مجھے رمضان کے بعد ہالینڈ جانے کا، فور ایمسٹرڈم، اور وہاں ہم ایک بستی میں گئے تھے، نام پتہ نہیں کیا، وہ تو پوری سمندر پہ بنی ہوئی ہے، یعنی پانی کو پیچھے کر کر کے انہوں نے مٹ ڈالی ہے۔ اور وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ ہالینڈ کی یہ اسپیشلٹی ہے ڈیمز بنانا اور سب۔ اور جو وہ باتیں بتا رہے تھے، تو بس اس کے بعد واپسی کے دن گن رہے تھے کہ اللہ ہمارے جانے تک تو کچھ نہ کرنا، کہ شہر نیچا ہے اور سمندر اونچا ہے، اور پانی کے اندر انہوں نے گیٹس لگائے ہوئے جس سے پانی ادھر ادھر کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ سوچ کے مجھے تو لگے کہ بس یہاں سے بچ گئے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن جو رہ رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا تھوڑے دن کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ फिर इसी तरह एक टाउन में हमें वो लोग लेके गए, बड़ी मशहूर जगह, नाम जरा मुश्किल है इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। तो वो पूरा शहर ही पानी पे बना हुआ, यानी एक घर से आपको मेरे घर में आना है तो कश्ती पे आना। अब देखने में तो ये खूबसूरती है लेकिन रिस्क है, पानी के साथ जो भी लोग रहते हैं। तो जब अल्लाह ये कर सकता तो एक बंदे को लेके जाना क्या मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ना ले जाए, बंदा खुद ही अपने आप को हमेशा इस तरह समझे कि मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा। और आखिरी मसला इस बाब का, मसला 45, कि तकब्बुर से पगड़ी का शिमला गैर मामूली लंबा करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ नजरे करम नहीं फरमाएंगे। हदीस 190, इसकी हदीस मसला नंबर 190 में आएगी। अब आप देखिए कि आज हमारे यहाँ तो पगड़ी पहनने का कोई इतना रिवाज नहीं, लेकिन आज भी जहाँ लोग पहनते हैं देहातों में, तो मैंने सुना है कि शायद 10-10 15-15 गज लंबी पगड़ियाँ होती हैं, और बल पे बल, और फिर ऊंचा शिमला, ऊंची शान, ये नाम तो सुने हुए हैं। तो ऊंची शान अल्लाह की है, किसी की नहीं है। ये जो टॉपिक पूरा हुआ, इसमें से कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई बात सुनने के दौरान आई हो तो। जी देखिए, फत्तकुल्लाह हम अस्तताअतुम, इनका सवाल आप तक पहुंचा है कि नहीं, कि घर के अंदर के महरम रिश्तों के साथ क्या सलूक, यानी बहन भाई के सामने किस हद तक आए, ये सवाल कर ले। जवान बेटा माँ के सामने कैसे आए, या माँ बेटे, फत्तकुल्लाह हम अस्तताअतुम। आप अपने ड्रेस को देखें, किसी को भी उसको देख कर फीलिंग आती है कि ये जिस्म नुमाया हो रहा है। जिस तरह किसी गैर को दिखाना जायज़ नहीं है, तो अपनों को दिखाना तहजीब और कहना चाहिए कि रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ख़ास तौर पे बहनों को भाइयों के सामने आते हुए तो स्पेशल है। देखिए यहाँ हम इंशाल्लाह अपने कल्चर की बात ना भी करें, अभी ये चीज़ नहीं हुई होगी या है तो बहुत कम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब महरम रिश्तों में जिना होगा। और उसकी वजह क्या है, आप देखिए ना, जज्बात उभरते हैं। एक औरत है, उसका ड्रेस देखकर क्यों मना किया गया कि बाहर ऐसे ना निकले, क्योंकि जज्बात उभरते हैं। तो घर में अगर उभरा है तो क्या होगा। तो कोशिश करनी चाहिए, और इसमें कमी बेशी से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए काम करते हुए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल सिखाई थी, कि बच्चों को कहें नजरें झुका कर चलें, और ख़ास तौर पर सीने खोल कर। ये जो आज खिमार की बात हुई है, तो आप देखिए, कभी तस्वुर ही नहीं था कि मुसलमान औरत है और उसके सीने पर कपड़ा ना हो। खिमार कहते ही वो कपड़ा है जो सर पे डालें तो सीने को भी छुपा ले। आज होता क्या है कि स्काफ के नाम पर हम स्काफ पहनते हैं, चूंकि आज बालों की भी थोड़ी बात हुई है ना, तो शायद ये मौजू भी फायदा मंद होगा कि जब आप स्काफ पहन लेते हैं तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीकों से आप देखिए कि बाल तो छुप ही जाते हैं, कि बाज़ दफ़ा इतनी नफासत और महारत से स्काफ पहना जाता है कि वाकई एक बाल नहीं दिखता, कोई शक नहीं, लेकिन सीना खुल जाता है। काले बालों में ज्यादा खूबसूरती है या सीने के ऊपर पे, गर्दन में ज्यादा खूबसूरती है के बालों में। तो जब भी पहने, अगर आपने स्काफ खूब टाइट किया है, तो फिर आपके गले में कोई ना कोई दुपट्टा चादर होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप इसको तहजीब की नजर से भी देखेंगे, आपको ये चीज ज्यादा दुरुस्त महसूस होगी। और इसमें थोड़ा सा माइंडसेट कर लेंगे, अगर मैं थोड़ी कम भी अच्छी लगी, थोड़ी कम भी मेरे अंदर खूबसूरती हुई, तो भी क्या जाएगा, क्या बिगड़ेगा। बट अगर मैंने कोई लिमिट क्रॉस कर ली तो नुकसान बहुत बड़ा है। ठीक है जी,
ये जो
जी जी
कितना
अलग से, एक हम्प नहीं दिखना चाहिए, और ये जो आपका कद है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और गर्दन के ऊपर, जैसे गर्मियों में औरतें दुपट्टे को समेट लेती हैं जरूरत के तहत के जिससे आपको लगे, इट्स ओके। लेकिन सीधी सी बात है, जो फीस मारना स्काफ के नीचे कपड़े ही को चाहे लपेट के या कोई मोपिट पहनकर, इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है जी, आप जी मैंने कह दिया ना कि सर से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी आपका कद उसकी वजह से ऊंचा नहीं हो सकता। जी आप जी जी आजकल तो देखिए ना, कि आपको पता है कि जो ट्रैश होता है उसको वैसे भी जलाते ही है ना ये लोग, तो बस उसको अच्छे तरीके से फेंक दें। कोई इस पे हमें हदीस से वजाहत नहीं मिलती। ये जो बताया था कि हमारी नानियां दादियां फेंकती थी, तो वो उनका एहतियात का तकाजा था, लेकिन मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि मतलब उतरे हुए बालों को भी कोई ना देखे, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने सारे बालों को अच्छी तरह से लपेट कर, तो फिर बिन में इस जगह डालेंगे, फिर वो सीधी बिन में चली जाए, किसी दूसरों की अप्रोच में ना हो, ये चीज़ है। ठीक है,